नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ नीरज मित्तल ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। राज्यों को जमाखोरी, हेराफेरी और घबराहट पैदा करने वाली गलत सूचनाओं के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने की भी सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंदुरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने व्यापार, उद्योग, ऊर्जा, उर्वरक, संपर्क और आवागमन के साथ साथ प्रौद्योगिकी, नवाचार और महत्वपूर्ण खनिजों में नए अवसरों पर केंद्रित व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने से देश में जीवन यापन और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विधेयक विश्वास पर आधारित ढांचे को मजबूत करता है। संसद ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा ने ये विधेयक बुधवार को पारित कर दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संसद में जन विश्वास विधेयक 2026 का पारित होना जीवन और व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये विधेयक कई कानूनी प्रावधानों को कम करके सभी के लिए जीवन को आसान और व्यापार को सरल बनाकर प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत के सपने को साकार करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा है कि इस विधेयक में किए गए सुधार कानूनों को सरल बनाने, व्यवसाय और व्यक्तियों पर कानूनी नियमों, सरकारी नीतियों तथा कर संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय, वित्त और प्रशासनिक दबाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री गोयल ने ये बात कही। शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सलाह पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को एक अलग श्रेणी के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय घोषित किया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में UGC पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था। इसके बाद UGC विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया गया और NCERT को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मालदा जिले में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव के मुख्य साजिश रचने वाले सहित 2 लोगों को सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अधिवक्ता मुफक्कुरुल इस्लाम के रूप में हुई है, जिसे विमान में चढ़ने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए अपर महानिदेशक के जयरामन ने बताया कि मुफक्कुरुल इस्लाम उत्तर दिनाजपुर जिले के ईटाहार का रहने वाला है और वर्तमान में कोलकाता में रह रहा है। उन्होंने बताया कि बुधवार को भाषणों के माध्यम से स्थानीय लोगों को कथित तौर पर भड़काने के आरोप में कालियाचक पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष आज 35वें दिन भी जारी है। अमरीका और इसराइल ईरान तथा उसके सहयोगी पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। खाड़ी देशों में सैन्य प्रतिष्ठानों के अलावा नागरिक और औद्योगिक ढांचों पर भी हमलों की खबरें हैं। इससे दुनिया भर में ईंधन की आपूर्ति में रुकावट आई है। सऊदी अरब ने पिछले कुछ घंटों में 7 ड्रोन को मार गिराया है। कुवैत की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर भी आज सुबह एक बार फिर हवाई हमले की खबर है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के सबसे ऊंचे B-1 पुल को नष्ट कर दिया गया है। उनका ये बयान ईरान को पाषाण युग में धकेलने की धमकी देने के कुछ घंटों बाद आया है। सैफ U20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। मैच मालदीव के माले में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।